नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार नवाचारी तरीकों से आतंकवाद का सफाया करने के लिए प्रतिबद्ध। उन्होंने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा, नीट परीक्षा में अनियमितताओं के दोषी पाए जाने पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल का लोकार्पण किया। उन्होंने स्थल को प्रेरणादायक बताया। सिक्किम के लाचुंग और चुंगथांग में खराब मौसम के कारण फंसे पर्यटकों के बचाव अभियान में बाधा आ रही है। भारत और कंबोडिया के बीच पहली सीधी उड़ान शुरू। और अंकिता भकत ने तुर्की में तीरंदाजी क्वालिफायर के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर पेरिस ओलंपिक का कोटा हासिल किया। समाचार संध्या के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार नवाचारी तरीकों से आतंकवादियों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में आज एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने सभी सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश दिया कि मिशन के रूप में समन्वय के साथ काम करते हुए आतंकी गतिविधियों पर त्वरित कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई निर्णायक दौर में पहुंच गई है। हाल की घटनाएं बताती हैं कि आतंकवादियों की संगठित गतिविधियां कम हो रही हैं और वे अब छद्म युद्ध का रास्ता अपना रहे हैं। गृहमंत्री ने सुरक्षा एजेंसियों से आतंकी गतिविधियों की आशंका वाले इलाकों की पहचान करने और वहां सुरक्षा के मुद्दों पर ध्यान देने को कहा। श्री शाह ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराते हुए कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को जड़ से खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उन्होंने कहा कि कश्मीर घाटी में सरकार के प्रयासों को बड़ी सफलता मिली है और आतंकी घटनाओं में कमी आई है। गृहमंत्री ने कहा कि कश्मीर घाटी में पर्यटकों की बढ़ती संख्या कानून व्यवस्था में सुधार का परिचायक है। बैठक में गृहमंत्री ने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था और अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने आज कहा कि इस वर्ष राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के आयोजन में अनियमितताओं के लिए दोषी पाए जाने वाले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। श्री प्रधान ने ओडिशा के संबलपुर में कहा कि दो स्थानों पर अनियमितता बरतने की घटनाएं सामने आई हैं।
नीट एग्जामिनेशन में कुछ विसंगतियां कुछ ही स्पेसिफिक जगह की ध्यान में आई है। जहां जहां इस प्रकार की गड़बड़ियों की सूचना पुख्ता जानकारी के साथ अभी मिल रहा है, उस पर स्पेसिफिक कार्रवाई भी कोर्ट की निगरानी में सारा विषय को किया जा रहा है। उसमें जो भी गड़बड़ी में दोषी पाए जाएंगे वो एनटीए भी हो तो भी उसको बख्शा नहीं जाएगा।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में बहुत सुधार किए जाने की आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आज शाम संसद भवन परिसर में नवनिर्मित प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। प्रेरणा स्थल को इस तरीके से विकसित किया गया है कि संसद भवन परिसर में आगंतुक सरलता से महान नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं एक स्थान पर ही देख सकें। आगंतुकों को इनके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया गया है। श्री धनखड़ ने कहा कि यह स्थल बहुत प्रेरणादायक है।
इज मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल और जो भी यहाँ कुछ भी पल बिताएगा प्रभावित रहेगा नहीं। भारत के इतिहास में इन महापुरुषों का क्या योगदान, इन महापुरुषों को किस कालखंड में याद किया गया। ऐसी परिस्थिति मैंने सेंट्रल हॉल में देखी। 1989 में सांसद बना, उसके बाद उसका परिवर्तन निरंतरता से।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रेरणा स्थल भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरणा देगा।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो, बाबा साहब अम्बेडकर हो, महाराणा प्रताप हो, चाहे छत्रपति शिवाजी हो, सभी प्रतिमाओं को हमने एक स्थान पर लाया है ताकि आने वाली पीढ़ी जितनी भी प्रतिमाएं हैं 15 प्रतिमाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके और उन्होंने इस देश के इतिहास में जो आध्यात्मिक सांस्कृतिक योगदान के साथ भारत को उच्चतम स्तर पर ले जाने का उनका योगदान है उस पीढ़ी को जान सके।
केंद्र सरकार ने आपराधिक न्यायिक प्रणाली प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ शीर्षक से आज कोलकाता में एक सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि 3 नए आपराधिक कानून लोगों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए बनाए गए हैं। श्री मेघवाल ने कहा कि देश की स्थिति और समय के अनुसार कानूनों में बदलाव की आवश्यकता होती है। केंद्रीय मंत्री ने इन आरोपों को खारिज किया कि केंद्र सरकार ने बिना किसी से परामर्श किए जल्दबाजी में ये कानून बनाए हैं। उन्होंने बताया कि तीनों कानूनों के लिए बड़े स्तर पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसके लिए बीपीएनआरडी ये भी ट्रेनिंग दे रही है। हमारी जो जुडिशियल एकेडमी जगह जगह है, नेशनल जुडिशियल एकेडमी भोपाल है, हर राज्य में तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, उन सब जगह इसकी ट्रेनिंग की व्यवस्था, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़ा होना है, FSL की जो लेबोरेटरीज ज्यादा बढ़ानी है, ये सब चीजें साथ साथ चल रही है और 1 जुलाई से ये तीनों नए कानून लागू हो जाएंगे।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। सिक्किम में तेज बारिश के बाद भूस्खलन के कारण मंगन जिले के लाचुंग और चुंगथांग में फंसे 15 विदेशियों सहित लगभग 2000 पर्यटकों को निकालने में बाधा आई है। फंसे पर्यटकों को हवाई मार्ग से निकालने के आज प्रयास किए गए, लेकिन खराब मौसम और भूस्खलन से सड़क अवरूद्ध होने के कारण ये काम नहीं हो पाया। इस बीच राहत और बचाव का काम जोरों पर है। सबसे ज्यादा प्रभावित मंगन जिले में सुविधाओं की बहाली के सभी उपाय किए जा रहे हैं।
सिक्किम में भारी बारिश के कारण कई भूस्खलन और दरारें हुई हैं, जिससे कनेक्टिविटी बाधित हो गई है। एक महत्वपूर्ण चुनौती दिक्सू के पास 180 मीटर चौड़ी दरार है, जिसे BRO पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग से पीकास पुलियों को लाकर मरम्मत कर रहा है। नगा और लंगथखोला के बीच कनेक्टिविटी बहाल करने के लिए गैंगटोक सुंगथांग सड़क पर भी प्रयास चल रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए गैंगटोक से इबोमसर शर्मा।
मणिपुर की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। उन्होंने विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रपति से तत्काल कार्रवाई का अनुरोध किया। सुश्री अनुसुईया ने हाल ही में मणिपुर में आई बाढ़ और राज्य और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा किए गए राहत और बचाव कार्यों के बारे में जानकारी दी। राज्यपाल ने राष्ट्रपति से विस्थापित लोगों को वित्तीय सहायता देने की भी मांग की। तेल और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कर्नाटक में ईंधन मूल्यों में बढ़ोतरी के लिए कांग्रेस पार्टी की आलोचना की है। कर्नाटक में राज्य सरकार ने कल पेट्रोल और डीजल पर बिक्री कर 3 रूपये प्रति लीटर बढ़ा दिया था। उन्होंने कहा कि ये निर्णय कांग्रेस के दोहरे चेहरे को बेनकाब करता है। कांग्रेस महंगाई की बात करती है, लेकिन भाजपा शासित राज्यों की तुलना में ईंधन की कीमतों में लगभग 8 से 12 रूपये प्रति लीटर तक वैट ज्यादा लगाती है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC ने देश में बढ़ती वित्तीय धोखाधड़ी की घटनाओं से निपटने के लिए मल्टी मॉडल जागरूकता अभियान शुरू किया है। एक रिपोर्ट।
इस अभियान के अंतर्गत लोगों को समाचार पत्रों, मोबाइल संदेशों, ईमेल और सोशल मीडिया सहित अन्य माध्यमों से वित्तीय धोखाधड़ी के जाल से बचाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। CBIC ने कहा है कि ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जहां धोखेबाज लोग खुद को भारतीय सीमा शुल्क अधिकारी बताकर पैसे ठगते हैं। ये धोखाधड़ी मुख्य रूप से फोन कॉल या SMS जैसे डिजिटल माध्यमों का उपयोग करके की जाती हैं। लोगों को डराया जाता है कि यदि उन्होंने पैसे नहीं दिए तो उन्हें सजा हो सकती है या जुर्माना लग सकता है। बोर्ड ने लोगों से धोखेबाजों को समझने, अपनी जानकारी लोगों से साझा न करने, कॉल करने वाले को सत्यापित करने और सतर्क रहने और जालसाजी की शिकायत करने का आग्रह किया है। समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और कंबोडिया के बीच आज पहली सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हुई। कंबोडिया में भारतीय दूतावास ने कहा कि सीधी उड़ान सेवा के जरिए हम पहले पर्यटन साल की शुरुआत करेंगे और इससे पर्यटन के क्षेत्र में वृद्धि होगी और लोगों के बीच संपर्क और भी मजबूत होगा। दूतावास ने भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत इसे ऐतिहासिक क्षण बताया। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आज वृत्त चित्रों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता जुटाने के मुद्दे पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। इसमें वृत्त चित्र निर्माण को लाभदायक बनाने और उन्हें वित्त उपलब्ध कराने के तौर तरीकों पर भी चर्चा की गई। इस बीच महोत्सव के रेड कार्पेट इवेंट का आयोजन कल नई दिल्ली में होगा। ये पहली बार है जब फिल्म महोत्सव का आयोजन अन्य शहरों में भी किया जा रहा है। मुंबई के साथ साथ दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और पुणे में भी एक साथ फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद उल अजहा की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ईद उल अजहा का पवित्र त्यौहार त्याग और बलिदान का प्रतीक है। ये प्रेम, भाईचारे और सामाजिक सद्भाव का संदेश देता है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के हिमालय की तलहटी वाले क्षेत्रों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में अगले 4-5 दिनों तक बहुत भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। कुछ स्थानों पर अति भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा कि 20 जून तक असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक उत्तर भारत में भीषण गर्मी की स्थिति बने रहने की आशंका जताई है। 21 जून को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर योग करते हुए अपना एक वीडियो साझा किया है। उन्होंने लोगों से योग के लाभों के लिए योगाभ्यास करने का आग्रह भी किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कल रात 9:30 बजे से स्वास्थ्य और कुशलता के लिए योग विषय पर चर्चा प्रसारित करेगा। इसमें मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के योग विशेषज्ञ डॉ सुरक्षित गोस्वामी और योग थेरेपी कार्यक्रम अधिकारी डॉ ईश्वर एन आचार्य भाग लेंगे। विशेषज्ञों से योग के विभिन्न पहलुओं जैसे इसके महत्व और लाभों के बारे में श्रोता सवाल पूछ सकते हैं। टेलीफोन नंबर है 0112342105 और 0112331444। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर 92890940044 पर भी प्रश्न भेज सकते हैं। अंकिता भगत ने आज अंतिम ओलंपिक क्वालिफायर में जीत हासिल करके ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। व्यक्तिगत कोटे शीर्ष 8 देशों को दिए जाते हैं। बेंगलुरू में पहले महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 143 रन से हरा दिया है। 266 रन का लक्ष्य भारत ने दिया था, जिसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 38वें ओवर में 122 रन पर आउट हो गई। स्मृति मंधाना ने सबसे अधिक 117 रन बनाए और दीप्ति शर्मा ने 37 रनों की पारी खेली। टी20 क्रिकेट विश्व कप में पाकिस्तान और आयरलैंड के बीच मैच खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक आयरलैंड ने 10 ओवर में 6 विकेट पर 59 रन बनाए हैं। पाकिस्तान और आयरलैंड की टीमें पहले ही विश्व कप से बाहर हो चुकी हैं। यूरो कप 2024 फुटबॉल चैंपियनशिप में आज पोलैंड और नीदरलैंड्स के बीच मैच खेला गया। नीदरलैंड ने पोलैंड को 2-1 से हरा दिया। भारतीय समय के अनुसार आज रात 9:30 बजे स्लोवेनिया और डेनमार्क के बीच मैच खेला जाएगा। देर रात भारतीय समयानुसार 12:30 बजे इंग्लैंड और सर्बिया के बीच मुकाबला होगा। इससे पहले कल खेले गए मैचों में स्विट्जरलैंड ने हंगरी को 3-1 से हराया, स्पेन ने क्रोएशिया को 3-0 से और इटली ने अल्बानिया को 2-1 से पराजित किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा सरकार नवाचारी तरीकों से आतंकवाद का सफाया करने के लिए प्रतिबद्ध। उन्होंने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा नीट परीक्षा में अनियमितताओं के दोषी पाए जाने वाले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल का लोकार्पण किया। उन्होंने स्थल को प्रेरणादायक बताया। सिक्किम के लाचुंग और चुंगथांग में खराब मौसम के कारण फंसे पर्यटकों के बचाव अभियान में बाधा आ रही है। भारत और कंबोडिया के बीच पहली सीधी उड़ान सेवा शुरू। और अंकिता भगत और भजन कौर ने तुर्की में तीरंदाजी क्वालिफायर के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।